زمانوں کی امنگ، باب نمبر 19۔ یعقوب کے کنویں پر گلیل کو جاتے ہوئے یسوع سامریہ سے ہو کر گزرا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب وہ سکم کی خوبصورت وادی میں پہنچا۔ وادی کے شروع میں ہی یعقوب کا کنواں تھا۔ سفر سے ماندہ یسوع ذرا سستانے کے لیے اس کنویں پر بیٹھ گیا جبکہ اس کے شاگرد کھانا خریدنے چلے گئے۔ یہودی اور سامری ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے لین دین تک نہ رکھیں، لیکن اگر کوئی نہایت ضروری خرید و فروخت یا کاروبار کیے بغیر جان نہ چھوٹتی تو اس کی شرح کے معلموں نے اجازت دے رکھی تھی۔ ان کے آپس میں سماجی روابط نہ ہونے کے برابر تھے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی صحبت کو ناپسند کرتے تھے۔ یہودی سامریوں سے کبھی کوئی چیز ادھار بھی نہ لیتے تھے، بلکہ ان کی کسی مہربانی کو بھی قبول نہ کرتے تھے۔ یہودی بھوک سے مر جاتے مگر روٹی کا ٹکڑا اور نہ ہی پانی کا گلاس سامریوں کے ہاتھ سے قبول کرتے۔ ہاں، اگر بھوکے ہوتے تو پیسے دے کر سامریوں سے کھانا خرید لیتے، جیسے شاگرد شہر میں کھانا خریدنے گئے۔ سامریوں کا اس سے زیادہ احسان لینے کے بارے یہودی سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ یسوع جب اس کنویں پر بیٹھا تھا تو یقیناً وہ بھوکا اور پیاسا تھا۔ صبح سے اب تک انہوں نے کافی سفر کیا تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی اور سورج اپنی پوری آب و تاب سے دہک رہا تھا۔ تازہ اور ٹھنڈے پانی کو دیکھ کر یسوع کی پیاس مزید بھڑک اٹھی، مگر اس کے پاس کنوں سے پانی نکالنے کے لیے رسی تھی نہ ڈول، اور کنواں جس میں سے پانی نکالنا تھا بہت گہرا تھا۔ بس وہ کسی کا انتظار کرنے لگا تاکہ کوئی آئے، پانی نکالے اور اسے پلائے۔ ایک سامری عورت وہاں آئی۔ اس نے پانی کا گھڑا بھرا اور جانے لگی۔ غالباً اس نے مسیح کی حضوری کو محسوس نہ کیا۔ جب وہ جانے لگی تو یسوع نے اسے کہا کہ مجھے پانی پلا۔ اس قسم کی درخواست مشرق میں رد نہیں کی جاتی، بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ پیاسے کو پانی پلانا باعث ثواب ہے۔ عرب کے لہکھوا، انہیں کتنی ہی تکلیف اٹھا کر پیاسے کو پانی پلانے جانا پڑے، وہ جاتے ہیں۔ مگر یہاں سامریوں اور یہودیوں کی آپس کی دشمنی راہ میں رکاوٹ بنی۔ یہ عورت یسوع پر کیوں کر مہربانی کرتی اور اسے پانی پلاتی؟ مگر مسیح تو اس موقع میں تھا کہ گفتگو کے ذریعے اس سامری عورت کو خدا کے قدموں میں لائے۔ ورنہ جس نے سمندروں کو پیدا کیا، جس نے زمین سے چشمے اور ندیاں جاری کی ہیں، وہ کسی کے ہاتھ سے پانی کی بخشش کا محتاج نہ تھا۔ اس خاتون نے دیکھا کہ یسوع یہودی ہے۔ اس حیرانگی میں اس نے مسیح کی درخواست پوری نہ کی، مگر یہ جاننے کی تجسس ضرور اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے کیوں پانی مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے۔ یوحنا 9:4۔ یسوع نئے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور ہی بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو تو اس سے مانگتی، وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ گو سامری عورت مسیح کی بات کو نہ سمجھ پائی، تاہم اس کے کلام کی سنجیدہ گہرائی اس نے ضرور محسوس کی۔ اس کے رویے میں تبدیلی واقع ہو گئی۔ پھر اس عورت نے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اس میں سے پیا؟ وہ خاتون سوچتی تھی کہ اس کے سامنے ایک عام پیاسا مسافر ہے۔ وہ ایس کا مقابلہ بزرگ یعقوب سے کر رہی تھی۔ اس نے یہ بات کہنے میں فخر محسوس کیا کہ جو کنواں ہمارے آبائی بزرگوں نے ہمیں دیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ اپنے آبائی بزرگ سے لے کر مسیح کی آمد تک سوچ رہی تھی، مگر نہ جانتی تھی کہ مسیح تو اس کے پاس ہی کھڑا ہے۔ آج بھی کتنی پیاسی روحیں زندگی کے چشمے کے پاس کھڑی ہیں، پھر بھی انہیں زندگی کا چشمہ بھر دور نظر آ رہا ہے۔ مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہے کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی مسیح، کئی اتارنے کو، یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی مسیح کو مردوں میں جلا کر اوپر لانے کو۔ بلکہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ آر تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداون ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خداون نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو نجات پائے گا۔ رومیو 6:10-9۔ مسیح یسوع نے سامری عورت کے سوال کا جواب بے شک فوراً نہ دیا، مگر بڑے خلوص سے فرمایا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ یوحنا 14:4۔ جو کوئی دنیاوی چشمے سے پانی پیتا ہے، وہ اس لیے پیتا ہے تاکہ دوبارہ پیاسا ہو۔ مرد و زن دونوں جگہ غیر تسلی پذیر ہیں۔ ان کی مسلسل تمنا ہے کہ کوئی شے ان کی روح کو تسلی پذیر کرے۔ صرف ایک ہے جو ان کی اس تمنا کو پورا کر سکتا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے جو تمام قوموں کی امنگ ہے۔ اسی کا واحد فضل ہے جو روح کو تازگی اور پاکیزگی بخش سکتا ہے۔ مسیح کا ہر گز یہ مطلب نہ تھا کہ جو اس پانی سے پیے گا اسے دوبارہ ضرورت محسوس نہ ہوگی، بلکہ جو اس کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ مسلسل اس کی محبت کی تمنا کرتا ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ اسے خدا کی محبت کے علاوہ کسی اور شے کی حاجت نہیں رہتی۔ نیز دنیاوی چاہ و حشمت، ثروت و تنگری بھی اسے خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری روح کی تشفی کے لیے کیا ضروری ہے۔ وہ انتظار میں ہے کہ ہم اس سے مانگے، کیونکہ تمام دنیاوی وسائل روح کو تشفی نہیں دے سکتے۔ روح کی پیاس بجھانے کو گھڑے خالی اور تالاب خشک ہو جائیں گے، مگر ہمارا خداوند ہو مبارک چشمہ ہے جو تا ابد جاری و ساری رہتا ہے۔ وہی ابدی زندگی کا چشمہ ہے جس سے ہر کوئی فضل، حکمت اور قوت پا سکتا ہے، تاکہ اس کی تمام ضروریات زندگی پوری ہو سکیں۔ جب خداوند مسیح نے زندگی کے پانی کے بارے کہا تو اس خاتون نے بڑی حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔
چاہتی تھی کہ اس بخشش کو حاصل کرے جس کا ذکر یسوع نے ابھی ابھی کیا تھا۔ اسے گمان ہو چکا تھا کہ جس پانی کی یہ بات کرتا ہے وہ یعقوب کے کنویں جیسا پانی نہیں۔ اس لیے عرض کیا، اے خداوند، وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ اب یسوع نے موضوع بدل دیا اور چاہا کہ اس سے پہلے کہ یہ عورت خدا کی بخشش کو حاصل کرے، اس کی توجہ اس کے گناہوں کی طرف مبذول کی جائے۔ چنانچہ یسوع نے اس خاتون سے فرمایا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلالا۔ مگر اس خاتون نے کہا، میں بے شوہر ہوں۔ مگر یسوع نے بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو پانچ شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں۔ اس لحاظ سے اے عورت، تو نے سچ کہا ہے۔ اس پر وہ عورت ڈر گئی۔ ایک پر اسرار ہاتھ نے اس کی زندگی کی تاریخ کے ورق کو الٹا دیا تھا اور ان باتوں کا انکشاف کر دیا جن کے بارے وہ سوچتی تھی کہ تاہیات کسی کو پتا نہ چلے گا۔ اس نے اپنے دل میں خوب غور کیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے اس کی زندگی کے بھیدوں پر سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ وہ طے سمجھتی تھی کہ صرف روز عدالت میں ہی اس کے گناہ آشکار ہو سکیں گے۔ یسوع نے جو کچھ کیا، ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی وہ عورت انکار نہ کر سکی۔ تاہم ان تمام باتوں سے بچنے کے لیے اس نے کہا، اے خداوند، مجھے ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ یوحنا 19:4۔ قائل ہونے کے باوجود پھر یسوع سے پوچھا کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پر ستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ وہاں سے گرزیم کا پہاڑ صاف نظر آ رہا تھا، اس پر جو ہیکل تھی اسے گرا دیا گیا تھا، صرف مذبحہ باقی تھا۔ کہاں عبادت کرنا تھی اور کہاں عبادت نہ کرنا چاہیے، یہودیوں اور سامریوں کے درمیان وجہ نزاع بن چکا تھا۔ سامریوں کے آبا و اجداد ایک وقت بنی اسرائیلوں کے افراد تھے، مگر ان کے گناہوں کے سبب خدا نے ان کو بت پرستوں کے غلام بنا دیا۔ کئی پشتوں تک بت پرستوں کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے ان کا اپنا مذہب غلط ملت ہو گیا۔ بے شک उनके बुत उन्हें हकीकी खुदा की याद दिलाते थे, मगर अफसोस कि वो हाथ की बनाई हुई मौरतों और सूरतों की परस्तिश करते रहे। जब इज़रा के ज़माना में यरूशलम की हैकल दोबारा तामीर हुई तो सामरियों ने चाहा कि हैकल की तामीर में यहूदियों का हाथ बटाएं, मगर यहूदियों ने इजाज़त न दी। यूं यहूदियों और सामरियों में दुश्मनी की खलीज मजीद गहरी हो गई। यरूशलम की हैकल के मुकाबले में सामरियों ने कोह ग्रजीम पर हैकल तामीर की, जहां वो मूसा की रसूम के मुताबिक इबादत करते थे। फिर भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर बुतपरस्ती से किनारा कशी न की। बदी वजह उन पर हर सख्त मुसीबत आई। दुश्मन ने उनकी हैकल को तबाह कर दिया। ऐसे मालूम देता था जैसे वो बड़ी लानत के तहत हों। इसके बावजूद वो अपनी रिवायात और रस्म रवाज और तरीका इबादत से दस्तकश न हुए। उन्होंने कभी भी यरूशलम की हैकल को खुदा का घर तस्लीम न किया, और ना ही ये माना कि यहूदियों का मजहब उनके अपने मजहब से बरतर है। सामरी औरत के सवाल के जवाब में यसू ने फरमाया, ए औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो उस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे और ना यरूशलम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी इबादत करते हैं, क्योंकि निजात यहूदी में से है। मसीह ने जाहिर किया कि उसके दिल में सामरियों के खिलाफ यहूदियों जैसा तासुब नहीं है। बेशक उसने वाजे किया कि सामरियों का चाल चलन बुतों की इबादत की वजह से खराब हुआ था, पर यह भी बताया कि नजात की बड़ी सच्चाई यहूदियों पर जाहिर की गई, क्योंकि उनमें से मसीह आने को था। उनके पास पाक नुस्खजात थे जिनसे खुदा की सूरत और उसकी हकूमत के उसूल और जाब्ते वाजे होते थे। यसू ने उसे खुद बताया कि मैं यहूदियों में से हूं जिन्हें खुदा ने अपने बारे पूरा पूरा इल्म दे रखा है। मसीह चाहता था कि खातून इबादत के तरीका और मजहबी रसूम से बालातर होकर सोचे और यहूदियों और सामरियों की इबादत में पाए जाने वाले तजाद को भूल जाए। चुनाचे उसने फरमाया, मगर वो वक्त आता है, अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें। यूहन्ना 23:4-24। यहां खुदा ने वही उसूल वाजे किया जो उसने निकदूमस पर वाजे किया था। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यूहन्ना 3:3। क्योंकि खुदा की बादशाहत में पाक पहाड़ या मुकद्दस हैकल की वजह से कोई दाखिल नहीं होता। मजहब की बुनियाद जाहिरी और बेरूनी रसूमात पर मबनी नहीं, बल्कि वो मजहब जो खुदा से सादिर होता है, खुदा तक पहुंचाता है। अगर हम रास्ती से खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो हमें इलाही रूह से पैदा होना जरूर है। खुदा की रूह दिल में पाकीजगी लाएगी, जहन को असर नौ ताज़ा करेगी और खुदा की मोहब्बत की वसत को समझने में इल्म बख्शेगी। नीज हमें उसके तमाम अहकामात की इताअत करने में मदद मिलेगी। यही हकीकी इबादत है और यही रूहुल कुदुस की खिदमत का फल है। खुदावंद ऐसी ही इबादत चाहता है और ऐसों ही की इंतजार करता है, ताकि उन्हें अपने बेटे और बेटियां बनाए। मसीह की गुफ्तगु से वो खातून निहायत मुतासिर हुई। ऐसी शाइस्ता गुफ्तगु उसने काहिनों के मुंह से सुनी थी, ना यहूदियों के। सामरी औरत का माजी उसके सामने खुला था। उसने जरूरत महसूस की कि उसकी माजी की खताओं का इजाला होना चाहिए। उसे अपनी रूह की प्यास बुझाने को पानी चाहिए था, क्योंकि सुखार का कुआं उसकी प्यास बुझाने के लिए नाकाफी था। अब तक जिस जिस से उसका आमना सामना हुआ, उसने उसके ईमान को कमजोर कर दिया था, मगर मसीह ने उसे कायल कर लिया था कि मैंने तेरे दिल, ख्यालात और आमाल को भी पढ़ लिया है। उसके बावजूद उस पर एतमाद रखती थी, उसे अपना गमगुसार और मुरब्बी मानती थी। मसीह की पाकीज़ा हुजूरी ने जहां उसके गुनाहों पर लानत की, वहां उसके दिल में अपने फजल की भी उम्मीद उजागर की। सामरी औरत को मसीह की सायरत में यकीन आ गया और वो सोचने लगी, क्या ये मुमकिन नहीं
कि यही आने वाला मसीह है जिसकी हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रुस्तस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा वो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही होगा। जो ही उस औरत ने ये अल्फाज सुने उसके दिल में ईमान पैदा हो गया। उसने इलाही मौलिम की बात का यकीन कर लिया। ये औरत इस मुकाशफा को मानने के लिए तैयार हो गई क्योंकि वो इल्हामी नुस्खों में दिलचस्पी रखती थी। रूह उसको तैयार कर रहा था ताकि उसका जहन मजीद रोशनी कबूल कर सके। मालूम होता है कि उसने पुराने अहदनामा का काफी मुतालिया कर रखा था। खुदावंद तेरा खुदा, तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बरपा करेगा, तुम उसकी सुनना। इस्तिसना 15:18। वो चाहती थी कि उस पेशनगोई की तफसीर समझे। नूर पहले ही उसके जहन में चमक रहा था, जिंदगी का पानी यानी रूहानी जिंदगी जो यीशु मसीह पर प्यासी रूह को देता है उसके दिल में आने लगी, क्योंकि खुदावंद की रूह उसके साथ काम कर रही थी। जो सादा सा इख्तिबास मसीह यीशु ने उस औरत के सामने पेश किया वो यहूदियों के सामने पेश नहीं किया जा सकता था, जो बजाते खुद रास्तबाज बने बैठे थे। जब मसीह उससे कलाम करता तो इस तरह खुलकर उनसे बयान ना करता, लेकिन जो कुछ मसीह ने यहूदियों को ना बताया वो अपने शागिर्दों और उस सामरी औरत पर आया किया, इसलिए कि मसीह जानता था कि बिलाखिर ये औरत दूसरों को मेरे कदमों में ले आएगी ताकि वो भी खुदा का फजल हासिल करें। जब शागिर्द वापस लौटे तो मसीह को एक औरत के साथ बातें करते देखकर हैरान रह गए, और वो इस बात पर भी हैरान हुए जब मसीह ने ना तो पानी पिया और ना ही खाना खाया जो वो शहर से खरीद कर लाए थे। और जब हू औरत चली गई तो शागिर्द उससे दरखास्त करने लगे कि ऐ रब्बी, कुछ तो खा ले। मगर उसने ना खाया और देखा कि उसके चेहरे पर जलाल चमक रहा है। फिर उन्हें जुर्रत ना हुई कि उस राबता से मुखिल हूं जो वो अपने बाप से रखे हुए है। ताहम वो जानते थे कि यीशु थका मांदा और भूखा प्यासा है, इसलिए उससे बजद हुए कि कुछ खा ले। मगर उसने उन्हें फरमाया कि मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। यूहन्ना 32:4। शागिर्द हैरान थे कि कौन उसके लिए खाना लाया होगा, मगर मसीह ने कहा कि मेरा खाना आया है कि भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। यूहन्ना 34:4। जब उस खातून का जमीर जाग उठा तो मसीह को बेहद खुशी हुई। उसने देखा कि वो जिंदगी का पानी पी रही है और उसकी भूख प्यास मिट रही है। उसने देखा कि जिस काम के लिए वो आया था उसमें उसे कामयाबी हासिल हो रही है। वो रूह जो रूहानी गिजा से सैर हो जाती है वो जिस्मानी गिजा की फिक्र नहीं करती। ये देखकर मसीह को बड़ा चैन आ गया और उसे ताजगी हासिल हुई। हमारे नजात दहिंदा को उन सब के साथ पूरी पूरी हमदर्दी है जिनको उसने अपने खून से खरीद रखा है। उसकी दिली ख्वाहिश है कि वो उसके पास आए और अबदी जिंदगी पाए। जिस तरह मान अपने बच्चों की खुशियों से बाग बाग हो जाती है, उसी तरह हमारा नजात दहिंदा हमारी खुशियों का खाहां जब हमारे दिलों से उसकी शुक्रगुजारी नमूदार होती है तो वो समझ जाता है कि हमारे अंदर रूहानी जिंदगी शुरू हो चुकी है। जब सामरी औरत ने खुदावंद यीशु का कलाम सुना तो उसका दिल खुशी से मामूर हो गया। हैरतअंगेज मुकाशफा ने उसे भरपूर कर दिया था, इसलिए वो अपना घड़ा वहीं छोड़कर शहर को चली गई, बाका दूसरों को भी वो खुशखबरी पहुंचा दे जो उसे पहुंचती थी। यीशु को भी मालूम था कि को ये क्यों चली गई है। सामरी औरत को यह भी भूल किया कि यीशु प्यासा है और मुझे उसे पानी पिलाना है। खुशी से मामूर वो खुशखबरी सुनाने भाग गई जो उसे मिली थी, और उस शहर में जाकर कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? उसकी बातों का उनके दिलों पर गहरा असर हुआ। उसके चेहरे पर अजीब तासुर था। उन्होंने उसमें खास तब्दीली देखी और उसकी बातों का यकीन करके यीशु को देखने का इश्तियाक जाहिर किया।
लिहाजा वो शहर से बाहर निकलकर उसके पास आने लगे। यसु मसीह अभी तक उस कुएं पर बैठा था और उसकी निगाह खेतों में पक्की हुई फसल पर पड़ी जो दूर दूर तक फैली हुई थी। यसु ने उसकी तरफ इशारा करके अपने शागिर्दों से कहा, ये उसने अलामत के तौर पर कहा, फसल पक गई है और काटने वाला मजदूरी पाता है और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है। अभी फसल के काटने में 4 माह बाकी थे, मगर वहां फसल तैयार थी ताकि काटी जाए। काटने वाला मजदूरी पाता है और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। यहां मसीह उस मुकद्दस खिदमत का जिक्र करता है जो खुदा के लिए की जाती है,
और ये खिदमत वो करते हैं जो खुद खुशखबरी को कबूल करते हैं। वही तो उसके कारिंदे हैं। वो उनमें से हर एक से तवक्को करता है कि उसकी खिदमत करें, ख्वाह हम बोएं या काटें, हम उसकी खिदमत में हैं। एक बीज बोता है, दूसरा फसल काटता है, दोनों मजदूरी पाने हैं और दोनों अपनी मेहनत का अजर पाकर खुश भी होते हैं। यसु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, औरों ने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत के फल में शरीक हुए। यूहन्ना 38:4। मसीह यसु पेंतकस के दिन की तरफ देख रहा था जब बहुत सी फसल जमा होने को थी, और शागिर्दों को याद रखना था कि ये उनकी मेहनत का सिला नहीं, बल्कि वो उस खेत में दाखिल हो रहे थे जिसमें किसी दूसरे ने खिदमत की थी। मसीह यसु इंसानों के दिलों में अबदी जिंदगी का बीज बोता है और फसल की नश्वोनुमा के लिए खुदा के साथ फितरत मिलकर काम करती है, ऐसा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। खुदा की फसल की बारिश, ओस और धूप उसे दी जाती है ताकि सच्चाई का बीज ताजगी और कुव्वत पाए, बल्कि मसीह यसु खुद अपने खून से सच्चाई के पौधों को सींचने वाला है। उसके शागिर्दों को ये इस्तेहकाक हासिल हुआ कि खुदा के साथ मिलकर काम करें। हो मसीह और कदीम अंबिया के साथ मेल कर काम करने वाले हुए। रूल कुदुस की बारिश से पेंतकस के दिन हजारों ईमान लाए। मसीह ने जो बीज बोने का काम किया था, उस काम के नतीजा में ये फसल हासिल हुई। जो काम मसीह यसु ने सामरी औरत से किया, अच्छा बीज साबित हुआ और बहुत जल्द फल लाया। लोग आए और उन्होंने मसीह की मुनादी सुनी और यसर पर ईमान लाए। मसीह से उन्होंने कई सवालात जो उनकी समझ से बाहर थे पूछे, और जब मसीह यसु ने उनकी सवालात के जवाबात दिए तो वो उसकी वजाहत से पूरी बरह मुतमईन हो गए। वो गहिया अंधेरे में से निकलकर नूर में आ गए। वो मजीद उसके काम से मुस्तफीद होना चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि जो जिंदगी बख्शिश बातें उन्होंने उस अजीम उस्ताद से सुनी हैं, उनको उनके दोस्त अहबाब भी सुने। इसलिए उन्होंने उसे दावत दी कि उनके शहर को चले और उनके साथ रहे। उनकी दरख्वास्त कबूल करते हुए यस्सू उनके साथ शहर को गया और 2 दिन तक उनके साथ रहा। बदी वजह और भी बहुत से लहग मसीह पर ईमान ले आए। यहूदी मसीह की सादगी को हकारत की नजर से देखते थे। उन्होंने उसके ख्यालात को नजरअंदाज करके उससे कहा कि कोई निशान दे जिससे हम जाने कि तू खुदा का बेटा है, मगर सामरियों ने कोई निशान तलब न किया और ना ही उनके दरमियान मसीह ने कोई मोजज़ा दिखाया। सिर्फ याकूब के कुएं पर सामरी औरत की जिंदगी उस पर आश्कार की। फिर भी बहतीरों ने उसे कबूल किया और सामरी औरत को कहा कि अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खोज सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुंजी है। यूहन्ना 42:4। सामरी जानते थे कि मसीह आने वाला है जो न सिर्फ यहूदी कौम को नजात देगा बल्कि पूरी दुनिया को। रूह कुदुस ने मूसा की वसातत से बता रखा था कि वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ नबी होगा, और याकूब के जरिए बताया गया था कि लोग जौक दर जौक उसके गिर्द जमा होंगे, और इब्राहिम के जरिए ये बताया गया था कि उसके वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। कलाम की उन पेशनगोइयों के मुताबिक सामरी लोग अलमसीह में ईमान रखते थे। यहूदी मसीह की पहली आमद की तफसीर गलत करते थे। मसीह की पहली आमद के बारे में जो कुछ वो बताते थे, असल में उसका इतलाक पहली आमद पर नहीं बल्कि दूसरी आमद पर होता था। यानी यहूदियों का ख्याल था कि मसीह जब आएगा तो अपने पूरे जलाल के साथ मुतलकुल इनान हुक्मरान की हैसियत से आएगा।
उसके साथ उसके पाक फरिश्ते होंगे और आते ही वो अपनी बादशाही कायम कर देगा। यूं यहूदी खुद को तसल्ली देते और उसकी आमद पर उसके सुत उस दुनिया पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे थे। वो दीवार जो यहूदियों और सामरियों के दरमियान हायल थी, मसीह ने उसे दूर करना शुरू कर दिया और बिला इम्तियाज तमाम दुनिया को नजात का पैगाम दिया। गो वो यहूदी था, फिर भी उसने फरीसियों के रस्म व रवाज को बालाए ताक रखकर सामरियों के साथ मेल जोल रखा। यहूदियों के तासुब के बावजूद जो वो सामरियों से रखते थे, मसीह ने सामरियों की दावत को कबूल किया। यहूदी तो उन्हें रद्द कर चुके थे, मगर मसीह यीशु ने उनके साथ खाया पिया, उन्हें तालीम दी और उनके साथ शायस्ता सुलूक रवा रखा। हैकल में एक छोटी दीवार रखी गई थी जो हैकल के मुकद्दस हिस्से को हैकल से जुदा करती थी। उस दीवार के ऊपर कई जुबानों में दर्ज था कि यहूदी के अलावा कोई उस दीवार को उबूर करके हैकल के पाक हिस्सा में दाखिल नहीं हो सकता। अगर कोई गैर यहूदी उस दीवार को पार करता तो यहूदी ख्याल करते कि उसने हैकल की बेहुर्मती की है। इस गुनाह की पादाश में ऐसे शख्स को जान से हाथ धोने पड़ते। मगर मसीह, जिसने हैकल की बुनियाद रखी और जिसकी तरफ तमाम कुर्बानियां इशारा करती थीं, उसने गैर अकवाम को अपने पास खींच लिया। उसने उन्हें हमदर्दी दिखाई और जिन्हें यहूदी रद्द कर चुके थे, उसके फजल ने उन्हें नजात बख्शी। सामरिया में मसीह के क़याम ने शागिर्दों को भी बरकत बख्शी, क्योंकि वो भी अभी तक यहूदियों के ज़ेरे असर थे। यहूदियों की तरह अभी तक उनका भी यही ख्याल था कि सामरियों से दुश्मनी रखना ही अपनी कौम से वफा है। मगर वो मसीह यीशु के हुस्ने सुलूक से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। अब वो क्यों कर मसीह के नमूना की पैरवी करने से इनकार कर सकते थे? मगर दिल में अभी उन्होंने सामरियों को ना बख्शा। अभी तक उनके दिल में सामरियों के लिए नफरत थी। बेशक वो सुस्त एतकाद थे और जो तालीम मसीह उनको देना चाहता उसे जल्द ना सीख पाते। मगर बाद में जब रूहुल कुदुस उन पर नाजिल हुआ तब समझे। पर उन्हें जिन्नात दहिंदा का कलाम और वो मेहरबानी और मोहब्बत याद आई जो उसने गैर अकवाम से की। अब पतरस सामरिया में मनादी करने गया तो उसने भी सामरियों को वही रूह दिखाई जो मसीह ने दिखाई थी। उसे अजीम मुअल्लिम का तजुर्बा याद आया और उसका जी शुक्रगुजारी से भर गया। वो खिदमत जो मसीह ने सामरी औरत के लिए पेश की, वही खिदमत वो आज भी पेश कर रहा है जो उसके पैरोकार कहलाते हैं। याद रखें कि खा कोई किसी भी नस्ल और मिल्लत से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, या कोई कितना ही रद्द किया हुआ क्यों ना हुआ, उसके हालात और उसकी जिंदगी खा कैसी ही क्यों ना हो, हम उसे मसीह की मोहब्बत से खारिज नहीं कर सकते। मसीह यीशु हर रूह से कह रहा है कि अगर तू मुझसे मांगती या मांगता तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। खुशखबरी का कलाम महज उन महदूद चंद लोगों के लिए ही नहीं जिनके बारे हम ख्याल करते हैं कि अगर वो मसीह को कबूल कर लेंगे तो उससे हमारी कद्र मंजिलत में इजाफा होगा। निजात का पैगाम सब तक पहुंचना जरूरी है। जहां कहीं भी निजात को कबूल करने के लिए दिल तैयार हों, मसीह वहां अपनी हिदायत देने को तैयार है। वो उन पर बाप को जाहिर करता है और उन्हें उस हकीकी इबादे के बारे मालूमात फराहम करता है जो उसे मंजूर है। वो हमारे दिलों को पढ़ लेता है। ऐसों के लिए वो कोई तमसील पेश नहीं करता, बल्कि उनको वो बराह रास्त कह देता है कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने सामरी औरत से किया था। यीशु यहूदिया से आकर याकूब के कुएं पर सिस्ताने के लिए बैठा। यहूदिया में उसकी खिदमत बहुत ही कम फल लाई। रब्बियों और काहिनों ने उसे रद्द कर दिया था, हत्ता के उसके अपने शागिर्द भी उसे इलाही जात समझने से कासिर रहे। इस जगह वो थका मांदा और परेशान बैठा था। इस सब के बावजूद उसने सामरी औरत को पैगाम सुनाने के मौके को हाथ से न जाने दिया। वो अजनबी औरत थी जिसे बनी इसराइल ने रद्द कर रखा था। नीज वो ऐलानिया गुनाह की जिंदगी बसर कर रही थी। मसीह ने बिल्कुल इंतजार न किया कि जब पूरी जमात आएगी फिर वास करूंगा। अक्सर मसीह ने छोटी छोटी सी टोलियों को पैगाम देना शुरू किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोग आते गए और उसके गिर्द बड़ा मजमा लग गया। इसी तरह खुदा के खादिमों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो थोड़े से लोगों से उस तरह कलाम नहीं कर सकते जैसे बड़े बड़े इज्तिमात में। शायद आपके पास एक ही आदमी है जो खुदा के बारे सुनना चाहता है। कौन जानता है कि मुनादी का उस पर असर कितना गहरा होगा। शागिर्दों को भी ये अजीब लगा होगा कि मसीह ने सिर्फ एक औरत को इतना वक्त दिया। वो सोचते होंगे कि ये सिर्फ वक्त का जिया है। अगर मसीह किसी बड़े मजमा में कलाम करता तो यकीनन ऐसा फल ना मिलता। मगर जिस खुलूस, मोहब्बत और वजाहत से मसीह ने सामरी औरत से कलाम किया, वो एला मर्तबा के मशीरों, काहिनों और बादशाहों के साथ ना कर सकता था। वो असबाक जो उसने सामरी औरत को सिखाए, उनकी बाजगश्त दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। सामरी औरत ने जितनी जल्दी नजात दहिंदा को पाया, उतनी जल्दी वो लोगों को मसीह के कदमों में ले आई। वो तो मसीह के शागिर्दों से भी कहीं ज्यादा मुअस्सर साबित हुई। शागिर्दों ने तो सामरिया में कोई ऐसी चीज ना देखी जिससे उनकी हौसला अफजाई होती। उनके ख्याल उस अजीम काम पर जमे हुए थे जो मुस्तकबिल में मुतवक्के था। उन्होंने अपने इर्द गिर्द तैयार फसल को ना देखा जिसे जमा करना था। मगर उस औरत के जरिए जिसे हकीर ख्याल किया जाता था, सामरिया का सारा शहर येसु के कदमों में आ गया। वो नूह जो उस तक पहुंचा, उसने अपने बाशिंदों तक फौरन पहुंचा दिया। ये औरत अमली ईमान की जिंदा मिसाल है। खुदा की बादशाही में हर सच्चा शागिर्द एक मिशनरे है। वो जो जिंदगी का पानी पीता है, खुद जिंदगी का चश्मा बन जाता है, यानी लेने वाला देने वाला बन जाता है। मसीह खुदावन का फजल रूह में ऐसा है जैसे सहरा में पानी का चश्मा, जो हरेक को ताजगी बख्शता और जो तबाह होने को है उन्हें जिंदगी का पानी अता करता है।